synonyms, vriddhau, old, anathau, who had no other person to look after their comforts, pitarau, my father and mother, na anya bandhu, who had no other friend, tapasvinau, who underwent great difficulties, aho, alas, maya, by me, adhuna, at that moment, tyaktau, were given up, akritajyena, ungrateful, nichavat, like the most abominable low class person. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki translation. My father and mother were old and had no other son or friend to look after them. Because I did not take care of them, they lived with great difficulty. Alas, like an abominable lower class man, I ungratefully left them in that condition. Purport. According to Vedic civilization, everyone has the responsibility for taking care of brahmanas, old men, women, children and cows. This is the duty of everyone, especially an upper class person. Because of his association with a prostitute, Ajamil abandoned all his duties. Regretting this, Ajamil now considered himself quite fallen. ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकेय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. हिंदी में क्लास करना है इसलिए हिंदी में अनुवाद करना होगा, तो जो श्लोक है उसका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा. अब मेरे पास हिंदी भागवत नहीं है तो जैसा है सामने वैसा अनुवाद कर रहा हूं. वृद्धौ अनाथौ, थैंक यू, वृद्धौ अनाथौ पितरौ न अन्य बंधु तपस्विनौ अहो मया अधुना त्यक्ताव अकृतेज्येन नीचवत. वृद्ध है, अनाथ है, पितरौ, पितरह पितरौ मतलब माता और पिता दोनों पेरेंट्स, ना अन्य बंधु क्योंकि उनको और कोई देखने वाला नहीं है, तपस्विनौ और तपस्वियों जैसा कष्टप्रद जीवन जो है जी रहे हैं. अहो, अहो यहां पर दुख को जताने के लिए कहा गया है. अहो हाय, माया मेरे द्वारा अधुना इस समय त्यक्ताव जो त्याग दिए गए हैं मेरे द्वारा, माया मैं कैसा हूं, अकृतज्ञ न मैं अकृतज्ञ व्यक्ति हूं, और मैं कैसा हूं, नीचवत. इस प्रकार से और प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक सभ्यता के अनुसार हर व्यक्ति पर ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बालकों तथा गौओं की देखरेख करने का उत्तरदायित्व होता है. यह हरेक का विशेषकर उच्च जाति के पुरुष का कर्तव्य है. अजामिल ने वेश्या की संगति के कारण अपने सारे कर्तव्यों का परित्याग कर दिया. इस पर पश्चाताप करते हुए अब वह अपने पति जीवन पर विचार कर रहा है. तो भक्त के लिए पश्चाताप करना कोई नई बात नहीं है. काफी सारे भक्त जो है जब भी अपनी प्रार्थनाएं लिखते हैं उसमें पश्चाताप बहुत सारी प्रार्थनाओं में रहता है. गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषयी दुर्जन सदा कामे रत किछु नाही मोर गुण. इस प्रकार से प्रार्थनाएं तीन प्रकार की होती है. तीन प्रकार की प्रार्थनाएं, एक होता है संप्रार्थनात्मिका, एक होता है दैन्य बोधिका, एक होता है लालसामयी. रूप गोस्वामी तीन प्रकार के प्रार्थनाएं जो है भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं. संप्रार्थनात्मिका मतलब भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान किसी प्रकार से मेरा मन जो है आपके अंदर आकर्षित हो जाए, आप में आकर्षित हो जाए, आपके बारे में सोचने में आकर्षित हो जाए। रूप गोस्वामी कहते हैं इसको, युवती नाम यथा युनी युनांच युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन मनोभिरमताम त्वयि। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी युवती का मन किसी युवक में लगता है, किसी युवक का मन किसी युवती में लगता है, उसी प्रकार से हे भगवान मेरा मन भी आप में लगा रहे, इस प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं। दूसरी प्रकार की प्रार्थना यह है जिसको कहते हैं दैन्य बोधिका। दैन्य बोधिका मतलब जहां पर भक्त अपनी दीन अवस्था का प्राकट्य करता है, यानी भक्त अपनी दीन अवस्था को प्रकट करता है, तो इस प्रकार की जो प्रार्थना है वो दैन्य बोधिका है। रूप गोस्वामी इसका भी उदाहरण देते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे पिलज्जा में किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा, मेरे समान कोई पापात्मा नहीं है, ना अपराधी च कश्चन, अपराधी भी कोई नहीं है। परिहारे पि लज्जा में, क्या किया मैंने बोलने में भी मुझे शर्म आता है। किं ब्रुवे पुरुषोत्तम, और क्या कहूं हे भगवान, और क्या कहूं। और तीसरा है लालसामयी, जहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं, यहां भक्त प्रार्थना करता है कि मुझे सेवा मिल जाए गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में, मुझे सेवा शाश्वत सेवा करने का मौका मिले। इस प्रकार की प्रार्थना का उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। कदाहम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन उद्बाष्प पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम। कदाहम यमुना तीरे, कब ऐसा होगा कि यमुना के तीर पे नामानि तव कीर्तयन, आपके नामों का कीर्तन करते हुए उद्बाष्प मेरा कंठ भर आएगा। पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीकाक्ष, रचयिष्यामि तांडवम, और मैं बड़ा तांडव रच दूंगा इस प्रकार आपके नामों का कीर्तन करते हुए। तो ये तीन प्रकार के प्रार्थना है, उसमें अजामिल जो है दूसरी प्रकार की प्रार्थना यहां पर कर रहे हैं। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि चार प्रकार के व्यक्ति जो है भगवान की शरण में आते हैं। ये चार प्रकार के व्यक्तियों को भगवद्गीता में भगवान ने इस प्रकार से बताया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुन आर्थो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा, चार प्रकार के लोग भजन्ते माम मेरा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ये जना सुकृतनोर्जुन, और ये जो भी चार है ये सुकृति इनके पास है, बिना सुकृति हुए मेरा भजन नहीं कर सकते। क्यों बिना सुकृति हुए भजन नहीं कर सकते, तो पहले ही शास्त्रों में दिया है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य वताम राजन विश्वासो नैव जायते। महाप्रसाद में, गोविंद में, नाम में, ब्राह्मणों में, वैष्णव में, जिनका स्वल्प पुण्य होता है, हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, विश्वासो नहीं बजाय थे, उनका कभी विश्वास ही नहीं बैठ सकता है इन चीजों में। भक्ति होने के लिए इसलिए थोड़ा सुकृति होना जरूरी है। सुकृति होना मतलब कोई पुण्य कर्म की सुकृति होना नहीं, ये नहीं कि पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किया था तो इस जन्म में जाके भक्ति मिल जाएंगे। तो बहुत पुण्यात्मा है भक्ति नहीं मिलते, बहुत बहुत जन्म पुण्य किया हो फिर भी भक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। कर्म अधिकार हो जाएगा किसी को, कर्म अधिकार भगवद गीता में सबके लिए बताया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भारत भर में भगवद गीता का सबसे फेमस श्लोक यही है कि कर्म का अधिकार है, जरूर है। कर्मणि एव, कर्म में ही अधिकारस्ते, अधिकार है तुम्हारा, मा फलेषु, फल में नहीं, कदाचन किसी भी समय, कर्म अधिकार बहुत अच्छा है, इसको कर्म अधिकार कहते हैं। तीन प्रकार के अधिकार होते हैं, कर्म अधिकार, ज्ञान अधिकार और भक्ति अधिकार। तो भक्ति अधिकार सबके लिए नहीं होता है, पूरे जगत भर के लिए कर्म अधिकार हो, जगत भर के लिए ज्ञान अधिकार, उसमें से कुछ लोगों के लिए ज्ञान अधिकार हो, और बहुत कम लोगों के लिए वास्तव में भक्ति अधिकार है। ऐसा रूप गोस्वामी भी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्ति का लक्षण एक है कि भक्ति जो है सुदुर्लभ है। छह गुण बताते हैं भक्ति के, क्लेशग्नि शुभ दामोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षिणी च सा। पहला गुण तो ये भक्ति का कि क्लेश अग्नि, क्लेश का हनन करने वाली है, शुभदा, सभी प्रकार का शुभ प्रदान करने वाली है, मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को भी तुच्छ कर देने वाली है, सुदुर्लभा। चौथा यह है कि भक्ति जो है सुदुर्लभ है। एक तरफ तो कहा जाता है कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। एक तरफ भगवान भगवद गीता में ये भी कह देते हैं ये जो धर्म है भागवत धर्म जो है ये प्रत्यक्ष करके आप फायदा पा सकते हो, डायरेक्ट रिजल्ट सुसुखम। तो सुख से जो है कर सकते हैं, और अव्ययम इसका कभी नाश नहीं होता, अव्यय है, कभी इसका नाश नहीं होता है। एक तरफ तो कह देते हैं कि सुलभ है, दूसरी तरफ कह देते हैं कि सुदुर्लभ है, तो इसके बीच में कुछ सामंजस्य बिठाना चाहिए। भक्ति सुलभ है या सुदुर्लभ है? तो भक्ति के पथ पे अग्रसर होना सुलभ है, आसान है, भक्ति शुरू करना बहुत आसान है। भक्ति शुरू करने के लिए एक ही चीज चाहिए, वो ये है कि भक्ति उन्मुखी सुकृति चाहिए, थोड़ी सुकृति चाहिए भक्ति शुरू करने के लिए। वो सुकृति भी ऐसी कि पिछले जन्म में किसी भक्त के साथ संग हुआ हो, किसी भक्त ने कृपा बरसाई हो, तो जाके भक्ति मिलेगी। बहुत पुण्यात्मा हो, बहुत हो पुण्य किए हो, फिर भी गारंटी नहीं है कि भक्ति मिलेगी, कोई उसका फिक्स गारंटी नहीं। पर किसी ने थोड़ा भी अगर किसी को भक्तों की कृपा मिली हो या भगवान की कृपा मिली हो तो हो सकता है। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं लभ्यते अपि तत्कृपयैव, ये प्राप्त होती है भक्ति वो कृपा से ही प्राप्त होती है, अन्यथा प्राप्त नहीं होती। नारद भक्ति सूत्र में कहने के लिए बहुत आसान था लभ्यते अपि पुण्यैव, पुण्य से भक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन पुण्य से भक्ति प्राप्त नहीं होती। कोई बहुत पुण्यशाली व्यक्ति हो तो नहीं है, कोई बहुत पापी व्यक्ति हो तो भी गारंटी नहीं है। चाहे पुण्यवान हो या पापी हो, जिसको भगवान के भक्तों की कृपा मिली हो तो उसको संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि बहुत सारे पुण्यशाली व्यक्ति है जिनको भक्ति नहीं है, और काफी जो है ऐसे हैं जो बहुत पापी हुए लेकिन भक्ति करते हुए देखे जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि भगवान की कृपा जो है भगवान डायरेक्टली नहीं देते। भगवान तो ये कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, मैं तो सभी जीवों के लिए समान हूं, मैं किसी के लिए द्वेष नहीं, मेरे में किसी के लिए अधिक प्रेम नहीं, सभी के लिए समान हूं। अब सबके लिए समान है तो सबको भक्त बना दीजिए। भक्ति जो है भगवान डायरेक्टली नहीं देते, भक्ति जो है भगवान अपने शुद्ध भक्त के द्वारा देते हैं। अब ये शुद्ध भक्त जो है इस ये जिसको चाहे उसको मिल जाए और जिसको ना चाहे उसको ना मिले। तो भक्ति जो है इसलिए सबको नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा सुकृति रहेगा तो शुरू कर सकते हैं भक्ति, थोड़ा सुकृति रहेगा तो। लेकिन रूप गोस्वामी जिस भक्ति की बात कर रहे हैं जो सुदुर्लभ है, रूप गोस्वामी उत्तमा भक्ति की बात कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। उत्तमा भक्ति मतलब प्रेम भक्ति की बात कर रहे हैं, ये प्रेम भक्ति पे पहुंचना सुदुर्लभ है। शुरू करना सुलभ है अगर सुकृति हो तो वैदिक भक्ति शुरू करें, साधन करें, भजन करें, गुरु का आश्रय ले। पर अनर्थ निवृत्ति से बाहर निकलना, भगवान से आसक्ति होना, तत्पश्चात भगवान के ऊपर भाव होना और भाव के बाद प्रेम होना, ये सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ है। छह गुण बताए गए, क्लेश अग्नि क्लेश को हरती है, शुभदा शुभ प्रदान करती है, मोक्ष लघुताकृत मोक्ष को तुच्छ करती है, सुदुर्लभा सुदुर्लभ है, सांद्रानंद विशेष आत्मा एकदम विशेष आनंद जो है इस भक्ति की आत्मा है, और श्री कृष्ण आकर्षिणी ये कृष्ण को आकर्षित करने वाली है। इसमें जो पहले दो गुण है ये तो वैदिक भक्ति में ही आ जाते हैं, क्लेश अग्नि और शुभदा साधन भक्ति में ही आ जाते हैं। कि जब हम साधन करते हैं तभी मिल जाते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि साधन करेंगे तभी क्लेश हर जाएंगे और बहुत सारा शुभ प्रदान हो जाएगा। भक्त होने के बाद हमको रियलाइज हो कि जीवन कितना कठिन था और अब हम कितने खुशी से जी रहे हैं। तो ये दो तो पहले साधन भक्ति में ही आ जाएंगे, फिर पहले चार जो है वो भाव भक्ति में आएंगे, क्लेशग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, ये भाव भक्ति में आएंगे। तो सुदुर्लभ जो है ये भाव भक्ति के अंदर, जब तक भाव भक्ति प्राप्त करना दुर्लभ है। और सांद्रानंद, विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्ष, सारे छह जो है वो प्रेम भक्ति में ही आएंगे, सारे छह गुण ऐसा है। रूप गोस्वामी जब डेफिनेशन देते भक्ति का, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा, तो और किसी ऑर्डिनरी भक्ति का डेफिनेशन नहीं दे रहे। कौन से भक्ति का डेफिनेशन दे रहे? भक्तिर उत्तमा। ये भक्ति सुलभ है शुरू करना, पर उत्तमा भक्ति जो है ये दुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ है। तो सुदुर्लभ होने की वजह से रूप गोस्वामी, सुदुर्लभ भी किस प्रकार से? दो प्रकार से रूप गोस्वामी कहते हैं कि पहले तो अगर बहुत समय तक भी साधन किया जाए, लेकिन हृदय में ये इच्छा नहीं हो कि भगवान से मुझे एक दिन अटैच होना है, जेन्युइनली पूर्ण रूप से अटैच होना है, और फिर भी बहुत लंबे समय तक एकदम क्या कहते हैं मैकेनिकल तरीके से साधन किया जाए तो प्राप्त नहीं हो सकती। रूप गोस्वामी कहते हैं ऐसे प्राप्त नहीं होगी भक्ति। वो जो भक्ति करते हैं और जो प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके हृदय में ये गोल होना ही चाहिए, ध्येय होना चाहिए, किसी न किसी दिन मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करूंगा। वो जो नहीं ध्येय रखेंगे और सिर्फ साधन करते रहेंगे तो रूप गोस्वामी बोलते वो भक्ति नहीं, फिर सुदुर्लभ है उनके लिए। दूसरा चीज, जो भगवान से आसक्ति भी रखते हैं, ये सब गोल भी बना के रखे हैं, मन में ध्येय बना के रखे हैं, फिर भी भगवान देते नहीं इतनी आसानी से, देंगे ही नहीं इतनी आसानी से, दो कारण से सुदुर्लभ है। क्यों नहीं देंगे इतनी आसानी से? तो रूप गोस्वामी कहते हैं अगर जिसको भी दे देते हैं भक्ति, भगवान उसके दास हो जाते हैं, भगवान अधीन हो जाते हैं उसके। तो भगवान इतनी आसानी से किसी के अधीन नहीं आते हैं, तो इसलिए भगवान भक्ति देने के लिए बहुत, वो भी उत्तम भक्ति देने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं, और देते हैं तो बहुत समय के बाद देते हैं, और वो भी बहुत सोचने विचार करने के बाद कि इसको दे दूं या नहीं, क्योंकि एक बार दे दिए फिर वापस नहीं लिया जा सकता वो। तो इसलिए सुदुर्लभ है, अन्यथा सुलभ है, सब साधन करना तो बहुत सुलभ है। इतना सुलभ है कि कभी कभी जो लोग भक्त नहीं है वो लोग चकरा जाते हैं सुन के, क्योंकि शुरुआत में ही पहले दो लक्षण बताए, क्लेशग्नि और शुभदा, सारे क्लेशों को हर लेती है भक्ति और सब शुभ प्रदान करती है। तो जब रूप गोस्वामी बताते हैं कि सारे क्लेशों को हर लेती है भक्ति, सभी क्लेशों को हर लेती है, सभी पापों को हर लेती है, तो रूप गोस्वामी उसमें उदाहरण देते हैं, भागवत के श्लोक का उदाहरण देते हैं, बोलते हैं यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रवनाद् यत्स्मरणादपि क्वचित् श्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। ये कपिल मुनि के उपाख्यान का श्लोक है। यह नामधेय श्रवणानुकीर्तनात्, जिनके नाम का श्रवण या कीर्तन करने से, यत् प्रहवनाद, जिनको नमस्कार करने से, स्मरणादपि और ध्यान करने से, क्वचित, बार बार नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कीर्तन करने से, थोड़ा सा ध्यान करने से, कपिल मुनि कहते हैं श्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते, जो कुत्ते का मांस खाने वाला भी हो वो तुरंत सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के समान हो जाता है। कुतः पुनस्ते भगवान नु दर्शन, फिर तो उनका कहना ही क्या जो आपका बार बार दर्शन करते हो, क्योंकि देवहूति माता देवहूति कह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या, मुझ जैसों का जो मैं आपका साक्षात दर्शन कर रही हूं हे कपिल मुनि, उनका कहना ही क्या। ये सुन के जो लोग भक्त नहीं है उन लोगों को विश्वास नहीं होता। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रभुनाथ स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्य, वो भी सद्य लिख तुरंत उसी क्षण सवनाय कल्पते, सोम यज्ञ के लिए अधिकारी हो जाता है। यहां जन्म भर से हम जब ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं उसके बाद हमारा जनोई संस्कार होता है, उसके बाद हम सारे वेदों के षडंग सीखते हैं, उसके बाद जाके फिर हमारा दीक्षा होता है, हमको गायत्री मंत्र मिलता है जो ब्राह्मण है जन्म से उके, फिर उसके बाद हम यज्ञ करना सीखते हैं। और ये सिर्फ नाम लेने से उसके बराबर हो जाएगा? रूप गोस्वामी कहते हाँ हो जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं हाँ हो जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं हाँ हो जाएगा। कुछ लोग विरोध करते हैं, नहीं हो सकता, इसलिए कुछ लोग टीका में लिख दिया ब्राह्मण इव पूज्य भवति, ब्राह्मण के समान पूज्य हो जाएगा, बस यहाँ पे यहां तक लिखना ठीक है। ये लिखना ठीक नहीं है कि ब्राह्मण के समान हो जाएगा, ये लिखना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। रूप गोस्वामी कहते नहीं, ग्रंथ लिखा है भक्ति रस। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अगर सिर्फ पूज्य होना ही लिखना था तो ये तो किसी ने बहुत कष्ट लगा के कल्पना की है, ये ग्रंथ का पर्पज ये नहीं है, किसी ने बहुत कष्ट करके ये कल्पना बनाई है कि पूज्य हो जाएगा। ग्रंथ का ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें रूप गोस्वामी ये श्लोक ग्रंथ में लिखा है कि भक्ति सारे क्लेशों को हर लेती है। अगर जन्म नहीं हर सकती तो भक्ति का फायदा क्या फिर? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूछते, जन्म ही नहीं है, जन्म का दोष नहीं हर सकते तो फायदा क्या होगा? बाकी सब चीज भक्ति से मिल जाएगा आपको, लेकिन ये ब्राह्मण होना नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बहुत कष्ट करके कल्पना कर रहे हो आप, इस प्रकार के कष्ट कल्पना मत करो। ग्रंथ में लिखा है स्वादोपि सद्य, तुरंत उसी क्षण, तो उसी क्षण माने उसी क्षण, उसका कारण भी भागवत के अगले श्लोक में बताया है। अहो बतश्व पचोतो गरीयन यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपुस्ते जुहुवृषस्नुरार्या ब्रह्माणु चूर्णाम गृणन्ति येते। जी जो इस प्रकार से नाम लेने के अधिकारी हुए हैं, भक्ति के अधिकारी हुए हैं, उन्होंने पिछले जन्म में ये सब करके हो गया उनका, ये सब करके हो गया उनका, इसलिए ये जन्म में अधिकार है उनको कि सिर्फ नाम लेने से वो पिछले जन्म में कुछ पाप किया रहेगा या कुछ अपराध किया रहेगा जिस वजह से इस जन्म में थोड़ा नीच योनि मिला है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने पहले सब यज्ञ तपस्या कर लिया है उसके कारण वो इस जन्म में सिर्फ एक बार नाम लेंगे आपका तो वो सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के समान ही हो जाएंगे, और पूज्य नहीं उसके समान ही गिने जाएंगे, यानी उनको अधिकार हो जाएगा इस प्रकार से। तो भक्ति इतने क्लेश हर लेती है ये देख के लोगों का विश्वास नहीं बैठता, और जो विश्वास नहीं बैठता इसलिए भक्ति के लिए नहीं अग्रसर नहीं हो पाते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं इसलिए संशयात्मा विनश्यति ना हम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा न अज्ञो च श्रद्धा ध्यानस्थ संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञ है जानता ही नहीं क्या होता है भक्ति, अश्रद्धा धान से श्रद्धा ही नहीं है जिसकी क्योंकि पहले पुण्य कर्म नहीं हुआ है, और संशय आत्मा बहुत अलग अलग संशय है क्योंकि यहां वहां से पढ़ रखा है बहुत कुछ, विनश्यति इसका तो नाश हो जाएगा। नायम लोकोस्ति न परो, इस लोक में भी नहीं और परलोक में भी नहीं, न सुखम संशय आत्मा, न सुख नहीं होगा उसको किसी भी प्रकार का, भौतिक सुख तो दूर की बात है, आध्यात्मिक सुख भी नहीं लाभ होगा उसको। तो बहुत जरूरी है भगवान के सभी भक्त जो है, ये भक्त होना इतना आसान नहीं है क्योंकि हजारों व्यक्तियों में से कोई एक ज्ञानी होने के लिए, और वो ज्ञानियों में से भी हजारों में से कोई एक होगा जो भक्त होने के लिए। इन लोगों को भक्ति तो बहुत आसान है, भक्ति क्या है, भक्ति जो ज्ञानी है कई बार के भक्ति की बहुत आसान है, उसमें क्या दिमाग ज्यादा नहीं, सिर्फ जप करना है, भगवान के सामने नाचना है, तो सब हो गया, इसमें क्या असली चीज तो वेदांत सूत्रों में है इस प्रकार से। जबकि भक्त तो कह देंगे कि श्रीमद् भागवत ही वेदांत सूत्रों के ऊपर अच्छी व्याख्या है, जो श्रीमद् भागवत समझ जाए वो वेदांत सूत्र समझ गया, क्योंकि सभी वृंदावन में सब जगह यही है विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्यावान जो लोग हैं उनकी परीक्षा करनी है तो भागवत में परीक्षा करो। तो इसी कारण से भक्त होना इतना सुलभ नहीं, पर ज्ञानियों को समझ नहीं आता, जल्दी नहीं समझ आता। चार प्रकार के लोग हैं, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। चार प्रकार के लोग भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा भजन करते। एक जो दुखी है, जैसे अजामिल दुखी है, दुख में भजन किया है। जिज्ञासु, शौनक इत्यादि ऋषि है जो जिज्ञासु थे। अर्थार्थी, ध्रुव महाराज जो कुछ लाभ पाना चाहते थे भगवान से। और ज्ञानी, चार कुमारों के तरह। इसमें से भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो त्यर्थम अहम सच में प्रिय। इसमें जो ज्ञानी होके भक्ति कर लेता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत दुस्तर मार्ग रहा है। उसके हृदय में जो संशय रहे हैं वो बाकियों से कहीं ज्यादा रहे हैं, पर फिर भी उसने सारे संशयों का छेदन करके मेरे भक्ति के लिए अग्रसर हुआ है वो व्यक्ति, इसलिए मेरे लिए वो सबसे ज्यादा प्रिय है। उसने ये संसार का ये भाग तो देखा ही है और वो भाग भी देख रहा है, भक्ति भी देख रहा है। उसने सब पूरा ज्ञान देख लिया, उसने ज्ञान के पूरे अरण्य को, पूरे जंगल को काट के बाहर निकला वो, तो उसको पूरा एक्सपीरियंस है पीछे का। साथ ही साथ अब वो भक्ति में है, तो वो जो ज्ञान उसको पीछे था वो सहायक होगा उसके भक्ति के लिए। इस प्रकार से बताते हैं। तो अजामिल या कोई भी भक्त हो, उनको जब भक्ति करना हो तो उसके लिए ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म भक्ति को कवर नहीं करना चाहिए। भक्ति ज्ञान और कर्म को कवर कर ले वो अलग बात, वो हो चाहिए, पर ज्ञान और कर्म भक्ति को कवर कर ले ये नहीं होना चाहिए। और अनुकूल लेना, अनुकूलता से भक्ति होनी चाहिए, अनुकूल रूप से। जैसे कंस ने भक्ति की वो नहीं, जैसे शिशुपाल ने भक्ति की वो नहीं, वो भक्ति ही है, पर अनुकूल लेना, अनुकूलता से भक्ति करना है। बार बार स्मरण, कंस भी स्मरण किया है भय से, शिशुपाल भी स्मरण किया है, उसको बहुत गुस्सा था भगवान पे, द्वेष था, लेकिन उस तरह से नहीं, अनुकूल लेना, बहुत अनुकूलता से स्मरण। अनुकूलता स्मरण नहीं करेंगे तो फिर उसको उत्तमा भक्ति नहीं कहलाया जाएगा। तो भक्त का कर्तव्य यह है कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, भगवान के बारे में अनुकूल रूप से सोचना है। किसी भी समय भगवान के बारे में प्रतिकूल रूप से नहीं सोचना है। प्रतिकूल रूप से सोचेंगे तो वो उत्तम भक्ति के योग्य नहीं हो जाते फिर। और भक्ति में भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते तारे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाया प्रेमदन। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, भजन में श्रेष्ठ है नौ प्रकार की भक्ति। कौन से नौ प्रकार की भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नौ प्रकार की भक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते, इसमें से कोई भी कृष्ण प्रेम और कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं, कोई भी एक करने से। धारे महाशक्ति, इतनी महाशक्ति है भक्ति में भी। पर तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इन नौ में भी सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? नाम संकीर्तन। निरअपराध नाम ले ले पाइए प्रेम, निरअपराध रूप से अगर नाम लेंगे तो प्रेम धन अवश्य प्राप्त होगा। निरअपराध रूप से अगर नाम लेंगे तो प्रेम धन अवश्य प्राप्त होगा। नाम लेना है पर निरअपराध रूप से। तो सबसे मुख्य है कि नाम लेना है और किसी की भर्त्सना नहीं करनी है, ज्यादा किसी की प्रशंसा, किसी का ओवर प्रशंसा नहीं, किसी की ज्यादा भर्त्सना नहीं करनी है। ये जो व्यक्ति कर सकता है वो व्यक्ति बहुत आगे जा सकते हैं भक्ति में। दो काम है, नाम जप करना है और किसी का भर्त्सना नहीं और किसी का ज्यादा प्रशंसा नहीं, मतलब ओवर प्रशंसा नहीं और भर्त्सना तो बिल्कुल नहीं, अवॉइड करना है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं उद्धव को, न प्रशंसे न गर्हयेत, ज्यादा प्रशंसा मत करो किसी के, ज्यादा किसी की निंदा मत करो। जो करेगा ऐसा वो अपने स्वार्थ से तुरंत पतन हो जाएगा उसका, वो अपने स्वार्थ से गिर जाएगा व्यक्ति। भक्त को चाहिए कि गंभीर रहे, और भक्त को चाहिए कि भजन करते समय अपराधों से अछूता रहे। इसी प्रकार से तो यहाँ पे विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। टैगोर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो? माइक दे दीजिए। हाँ माइक माइक आ रहा है।
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। आपने कहा अंतिम में कि जो भक्ति है वो ज्ञान और कर्म से नहीं ढकनी चाहिए,
ज्ञान और कर्म से
नहीं ढकनी चाहिए,
हाँ,
बल्कि भक्ति को
भक्ति ज्ञान और कर्म को ढक ले, ठीक है।
आप इसमें कुछ उदाहरण दे सकते हैं?
हाँ, इसका उदाहरण जीव गोस्वामी खुद ही बताते हैं। जीव गोस्वामी बताते हैं, कोई ये कहे मैं अंगूठी पहन रहा हूँ, मैं गले में लॉकेट पहन रहा हूँ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है भक्ति करने से, इससे भक्ति मुझे उतना सहायक नहीं करेगी जितना मुझे ये पहनना सहायता करेगा, तो वो व्यक्ति कर्मों से उसकी भक्ति कवर हो गई है। जो व्यक्ति ये कहे कि भक्ति तो ठीक है, वेदांत सूत्र पढ़ना पहला जरूरी है, नहीं तो भक्ति नहीं आएगी, उसकी भक्ति किससे कवर हो गई है? ज्ञान से कवर हो गई। तो जो भक्ति को इन पे डिपेंडेंट मान लेता है, जो भक्ति को कर्म पे डिपेंडेंट मान लेता है, या जो भक्ति को ज्ञान पे डिपेंडेंट मान लेता है, ये समझ लेना चाहिए कि ज्ञान या कर्म ने उसकी भक्ति कवर कर ली। पर जो ज्ञान और कर्म को भक्ति पे डिपेंडेंट मान लेता है, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि भक्ति ने उसके ज्ञान और कर्म को कवर कर लिया, इस प्रकार से।
हरेक्ष, यू टेलिंग अबाउट कि हमको कैसे ज्यादा भर्सना नहीं करना चाहिए और किसी का प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तो भर्सना तो समझ गया, तो प्रशंसा करने से हमारा क्या
क्योंकि क्या है, शास्त्रों में कहते हैं कि अति स्तुति निंदा समान, ज्यादा स्तुति करते हैं ना किसी की, मतलब उन टांग खींचने के लिए कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अति स्तुति हो निंदार लक्षण, चैतन्य चरितामृत में, कि ज्यादा किसी की स्तुति कर देते हैं ना, निंदा का लक्षण है वो, आप बहुत महान है, आप इतनी, ये भक्त के लिए ठीक नहीं है। जो जिसका जो यथोचित आदर करना चाहिए, ये भक्त के मर्यादा में है। जो भक्त मर्यादा में रहे तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद है, चैतन्य महाप्रभु को वो भक्त सबसे ज्यादा पसंद है जो मर्यादा के अनुसार रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्ति के मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। भक्ति के मर्यादा पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने भक्ति में किस प्रकार से मर्यादा रखनी है ये सिखाया है हमको। तो इसलिए भक्त को ज्यादा, ये मैं आपको बता भी देता हूँ, 11वां स्कंद 11:28, 1, 1, 2, 3, ये जो श्लोक है ना, ये आप देखिए, इसमें भगवान सीधा उद्धव से कहते नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि वो ज्यादा प्रशंसा करेंगे तो निंदा के समान हो जाता है, सामने वाला भी सोचता है कि काय को मेरा बेकार में ज्यादा ये कर रहे हैं, मैं योग्य नहीं हूं उस वैसे क्यों प्रशंसा कर रहे
हैं। चैतन्य महाप्रभु का ही उदाहरण आता है हरिदास ठाकुर के साथ और रूप गोस्वामी के साथ, जब रूप गोस्वामी ने वो स्पेशल वर्स लिखा था जगन्नाथपुरी में, हरिदास ठाकुर का जब तिरुभाव हुआ था, उसके साथ ही और भी कई इंसिडेंट जैसे महाप्रकाश लीला वगैरह, तब ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी की और वृंदावनदास ठाकुर की जो का जो उल्लेख आता है उसमें वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने उस भक्त को इस तरह से उसका ग्लोरिफिकेशन किया जैसे उनके 200 माउथ हैं, 1000 माउथ हैं, 5 माउथ हैं, ऐसे तो मेंशन है स्पेसिफिकली 5000 एंड ऑल, सो देयर इज एक्सट्रीम ग्लोरिफिकेशन, एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड, प्रोफ्यूस क्राइंग ऑफ टीयर्स। सो फॉर अ वैष्णवा, स्पेशली वैष्णव ऑफ अ वेरी हाई कैलिबर, हैविंग ग्रेट अप्रिशिएशन एंड ऑल्सो एक्सप्रेसिंग इट, इट सीम्स टू बी अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हर,
या इट इज फॉर वैष्णव हुज उत्तम अधिकारी, you can glorify him, especially guru, you can glorify him, therefore I said glorification should be according to the advancement of the devotee, according to the advancement of the devotee, no matter how much a devotee is advanced, we don't equate him to the supreme personality of Godhead, so in that also we maintain a certain level of glorification. So therefore we, according to every devotee, we have to glorify, but not to over glorify. Now, how much is glorification and how much is over glorification? That is something which one should understand according to the behavior which is shown by the previous Vaishnavas. how previous Vaishnavas have glorified, we should take a lesson from that and we should glorify in that manner. Glorification should be pleasing to the person. It should not bring displeasure to the person. Even for pure devotees, to glorify them, it should bring pleasure to them. It should not bring unnecessary displeasure to them.
Correct. जहाँ तक ये glorification का है, तो हम देखते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को glorify कर रहे हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी उसको सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं।
बिल्कुल।
और क्या है, ग्लोरिफिकेशन में एक ये होता है कि अगर हमको कोई ग्लोरीफाई करता है,
हाँ,
हमारे में तो अहंकार ऐसे ही है,
हाँ,
और ग्लोरीफाई होता है तो अहंकार और बढ़ता है,
हाँ,
तो कई बार हम देखे चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो कान बंद कर ले सुनने को तैयार नहीं,
हाँ,
तो हम लोग भी पता नहीं, मैं भी अब सबसे जानना चाहता हूँ कि अगर हमको कोई ग्लोरीफाई करता है तो हमको उसको सुनने को तैयार नहीं होना चाहिए। शुड नॉट ट्राई टू
कोई हमको ग्लोरीफाई करे ओवर ग्लोरीफाई करे तो पहले ही चैतन्य महाप्रभु की तरह ये कर, कि बिल्कुल योग्य नहीं हूँ इसके, बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, और संभव हो तो वहां से जल्दी चले जाना चाहिए, मतलब जल्दी रास्ता नापना चाहिए ऐसी जगह से जहाँ ओवर ग्लोरिफिकेशन होना है।
अब
जहाँ जेन्युइन कोई मतलब ग्लोरिफिकेशन वैष्णव कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन अगर वैष्णव को लगे कि ठीक है इसने ठीक कहा, तो भी अब सारा क्रेडिट जो है अपने गुरु को दे देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सारा क्रेडिट गुरु का ही होता है। इसलिए जो भी है, जैसे प्रभुपाद जी अपना सारा क्रेडिट गुरु महाराज को दे देते थे, तो उसी प्रकार से हमको दे देना चाहिए कि मेरे अंदर जो भी गुण है वो मेरे गुरु महाराज की वजह से है, और अवगुण जो है वो मेरे खुद की वजह से है। ठीक, अवगुण मेरे खुद की वजह से है, और जो गुण आए हैं वो सारे गुरु महाराज की कृपा की वजह से आए हैं। ये वैष्णव का एटीट्यूड होना चाहिए।
और भक्ति सिद्धांत महाराज का एक उदाहरण है, भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे थे कि जो मेरा दोष देखता है वो मेरा मित्र है।
जो दोष देखते हैं वो मित्र है, वास्तव में मित्र है, क्योंकि दोष देखते हैं तो मतलब हमको बताते हैं अगली बार ये नहीं करना, लेकिन जो प्रशंसा करते हैं वो ठीक ठाक प्रशंसा करते हैं, वो कोई ऐसे शत्रु नहीं है, पर जो ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं वो तो शत्रु ही है, वो जान लेना चाहिए। यथा योग्य प्रशंसा कर रहे, कोई भक्त 2 साल से 16 माला जप कर रहे, कोई आके कहे ये भक्त अच्छे है 16 माला जप कर रहे 2 साल से, यथा योग्य प्रशंसा कर दिए तो कह देना चाहिए कि नहीं, ये वैष्णव की कृपा की वजह से ये हो रहा है, इसमें मेरा कोई गुण नहीं है। कुछ सिर्फ 2 साल जप कर रहे 16 माला कोई आया तो बहुत शुद्ध भक्त है, तो ऐसे फिर समझ जाना चाहिए कि यहां से अभी रास्ता नापना चाहिए, यहां ज्यादा समय नहीं रुकना चाहिए। तो ये इस प्रकार भक्त को चाहिए कि ये थोड़ा इस मामले में थोड़ा चतुर हो, इस क्योंकि क्या है, इसमें अपराध होने का चांस रहता है, इसलिए भक्त को चाहिए इस मामले में थोड़ा समझदार हो।
हरे कृष्णा, समटाइम्स वी फाइंड सम डिवोटीज आर सार्केस्टिकली ग्लोरीफाइंग अदर डिवोटीज, इसे वो महात्मा आ गया, वो महाराज आ गया, व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट?
तो फॉर देम वी हैव टू जस्ट समहाउ फाइंड एन एग्जिट, फाइंड द फास्टेस्ट एग्जिट वेर इट इज, एंड बिकॉज डिवोटी डजंट वॉन्ट टू स्टे बिकॉज इट्स अननेसेसरी, दे आर नॉट प्रॉपरली इवन ग्लोरीफाइंग समबडी यू, एंड इट्स अ क्रिटिसिजम ऑल्सो, एंड बिफोर समथिंग सम इनकरेक्ट फीलिंग अबाउट दैट वैष्णव कम्स इन योर माइंड, बेटर टू यू नो लीव फ्रॉम दैट प्लेस। एक्चुअली मीन स्क्रिप्चर्स इट इज सेड मौनम सर्वार्थ साधनम, चुप रहता है ना वो सब कुछ हासिल कर देते, ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए चुप रह के तो आगे निकल जाए ना, दैट इज वन हु इज क्वाइट इन द स्क्रिप्चर इज मौनम सर्वार्थ साधनम, ही कैन अचीव एनीथिंग। समबडी में क्रिटिसाइज हिम वेरी हार्शली एंड देन ही सेज ओके नाउ कैन आई टेक योर लीव, सो देन इट्स ओके, डू यू अंडरस्टैंड? मौनम सर्वार्थ साधन, सब कुछ साधन कर सकते हैं जो मौन रख सकते हैं, बहुत कठिन परिस्थिति में भी मौन रख सकते हैं, वो सब साध कर सकते हैं। सो समबडी इज ओवर ग्लोरीफाइंग देन ओके प्रोजी, नाउ आई हैव समथिंग टू डू, आई विल टेक योर लीव प्रभु, लाइक दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे दैट इट मे हैपन, अदरवाइज देयर इज नो अदर। ऑलराइट, ओके, वन क्वेश्चन, वन।
Hare Krishna Prabhuji. How to deal with over criticism when somebody tries to criticize you just to discourage you?
Somebody tries to criticize us to discourage us. We are not so lowly in bhakti that we will be discouraged by anybody and everybody. Rup Goswami says that one who becomes easily discouraged in bhakti is Kanishta Adhikari. Because some strong person comes opposing his bhakti and he gives strong arguments, then a person's faith becomes crushed. Such a person is known as Kanishta Adhikari. So Rup Goswami says better to become Madhyam Adhikari. Faith is very strong. Faith is resting on Guru and Sadhu and Shastra. Ki I have received proper instructions from my Guru. There is no doubt about it. Ki I have received proper instructions from my Guru. There is no doubt that I have received the topmost spiritual master. In the heart of Vaishnava, it's not for open declaration. In the heart, the devotee should know. I have received the topmost spiritual master. The path of my spiritual life is wide open. And as long as I am not creating offenses, I can safely traverse on this path. If somebody does some criticism, they should know, is this mood reflected with my Guru? If it is not reflected in my Guru, then why I should not be overtly concerned about it. If there is some genuine concern which we have, we can take it to our spiritual master and say that such and such complaint was made by one devotee. Do you think I should improve on this? What suggestions would you give for me to improve on this? Then spiritual master gives, accordingly spiritual master gives advice. And that advice we should listen, because 10,000 people will come and say something to you. This will always happen. They will come and say something to you, something negative. And then you have to, like a sponge, you have to go down. And once they have left, then you can come up again. Okay. This is the technique you have to do. Otherwise, if you get disturbed by them, then the entire world will be big disturbance. Many people will create disturbance. So devotee should know how to be careful and little smart enough, to neglect whatever is not necessary.
Prabhuji, Hare Krishna. Prabhuji, what is the philosophy of criticism? It is the opportunity of our good luck or a bad luck? Mala, it is the opportunities.
No, criticism means, in Hindi it is called as Ninda. Ninda means, Sridhar Swami defines, Nindanam Dosh Kirtanam. To glorify the faults of others is called criticism. Kisi ke dosh ka kirtan karna, matlab usko Ninda keh dete hain. So, this is the philosophy. We have criticized somebody in the past, we have done something incorrect, so it comes back to us. We should learn how to tolerate it without giving it back. In the Mahabharata, it is said that one who tolerates criticism without saying anything, so the person who is criticizing, that person's good karma comes to you, and your bad karma goes to him. So it's fair enough, we can do that. One thing is, therefore I said, Maunam Sarvartha Sadhanam. चुप रहना बहुत ये बहुत डिफिकल्ट है उस समय, पर जो उस समय चुप रह जाता है वो व्यक्ति बहुत महान है, और जो इस चीज को परफेक्ट कर लेता है, इस आर्ट को, चुप रहना बहुत समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. खासकर भक्ति के बारे में बात नहीं हो रही हो, नॉर्मल बात हो रही हो, तो जो चुप रहना सीख जाए बहुत समय, वो गंभीर भक्त बन सकता है.
मुझे जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो या प्रीचिंग कर रहे हो कहीं आउटसाइड, तो वो लोग अगर कुछ बताते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ मिसकंसेप्शन है, तो हमको फिर चुप नहीं रहना चाहिए ना, हमको क्लेरिफाई दें.
हाँ, कोई मिसकंसेप्शन है वो तो इनोसेंट व्यक्ति है, पर कोई द्वेषी है वो अलग है. मध्यम अधिकारी के तीन लक्षण होते हैं, कि जो भगवान से प्रेम करते हैं उनसे मित्रता कर लेता है, जो भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं है उनको समझाता है, उनका दोस्त बन जाता है, और जो भगवान के द्वेषी है, शत्रु है, उनको निग्लेक्ट कर लेता है. तो ये मध्यम अधिकारी के लिए, आप जो भी प्रचार करने जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मध्यम अधिकारी की तरह जाना चाहिए प्रचार का. तो मध्यम अधिकारी का क्या एटीट्यूड है? एटीट्यूड ये है कि कोई भगवान के बारे में बहुत फेवरेबल हो, उसका दोस्त बन लो, मोबाइल नंबर ले लो, आपको प्रोग्राम के लिए बुलाएंगे, ठीक है, इस तरह से प्रोग्राम के लिए बुलाएंगे, भगवत गीता ले लिया, तुरंत भगवान का बहुत अच्छा भक्त दिख रहा है, हो सकता है, ठीक है, उसका दोस्त बन जाओ. जिसको कुछ मालूम नहीं है, कुछ मिसकंसेप्शन है, तो उसको, और जो समझने के लिए आया है, समझाने के लिए आया है नहीं, जो समझने के लिए आया है, क्योंकि बहुत सारे बहुत तेरे समझाने के लिए आ जाते हैं, तो वो नहीं, तो जो भगवान से समझने के लिए आए हैं या भगवान की फिलोसफी समझने के लिए आए हैं वो, लेकिन कुछ हृदय में संशय है या कुछ ठीक से नहीं समझ पाए, तो उनको समझा देना चाहिए कि ऐसा ऐसा है, और श्लोक दिखा के प्रमाण से समझाना, ये अपने मन से बताते बहुत बार, फिर वो लोग भी अपने मन से बताते, तो हर चीज बोलने के साथ एक प्रमाण देना चाहिए, तो भक्त को चाहिए कि शास्त्रों में ऐसे निपुण हो कि हर चीज बोले उसके लिए शास्त्रों का प्रमाण देने की सामर्थ्य रखे, धीरे धीरे हमको ऐसी निपुणता हासिल करनी चाहिए, तभी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और जो द्वेषी हो उसको उसका उसके कहते हैं रास्ता नाप लेना चाहिए, क्योंकि ये समझने के लिए नहीं आया है ये व्यक्ति, ये समझाने के लिए आया है, तो इस ऐसे व्यक्ति के से रास्ता नाप लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ठीक नहीं है और भक्ति को हमारे खराब करेंगे, इसको असत्संग कहते हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय भी कोई आके बहुत, कोई नास्तिक है आके बहुत कुछ बताते हैं, अरे गुरु क्या, हम खुद अपने गुरु हैं, तो इस तरह, तो फिर कह देना चाहिए कि ठीक है आप, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट में दिया जा रहा है, आप लेना चाहते हैं क्या, बाकी सब छोड़िए आपके लिए डिस्काउंट पे मिल रहा है, आपके लिए तो डिस्काउंट देना ही चाहिए, क्योंकि आप बाकी तरह से आप समझोगे नहीं, आपको डिस्काउंट देंगे तो ही समझोगे, तो आप लेना चाहते तो ले लीजिए, तो नहीं तो फिर ठीक है हरे कृष्णा ऐसा कह देना चाहिए। इसमें कोई जीत या हार नहीं होती, कोई इसमें हारने वाला या जीतने वाला कुछ नहीं, वाद विवाद नहीं करना चाहिए भक्त को ज्यादा। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं वादो नावलंब्य, ज्यादा वाद में नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा वाद में पड़ेंगे ना तो, वाद विवाद में पड़ेंगे ना भक्ति खराब हो जाती है, खराब हो जाती है भक्ति, भक्ति में मन नहीं लगता इसलिए। ठीक है ठीक है, एक आखिरी सवाल प्रभु जी।
पर प्रभु जी आपने कहा कि भक्त को प्रमाण जरूर देना चाहिए और शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, परंतु मनुष्य तो बहुत तेज है, बहुत चालाक है मनुष्य, उसे आप चाय दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, खाना दे दीजिए, वो प्रमाण नहीं चाहता है, और उसे आप वास्तविक एक रहस्य दीजिए, एक ज्ञान दीजिए, एक वास्तविक मार्ग की तरफ उसको प्रेरित कीजिए, तो वो प्रमाण चाहता है। तो इसमें एक्चुअली मैं समझता हूं कि ये कमी सामने वाले पे है, वो बहुत तेज है, बहुत चालाक है, उसको प्रमाण की आवश्यकता, यदि खाना देने में खाना प्रस्तुत करते हैं उस समय अगर वो यदि प्रमाण की आवश्यकता को भी ना मांगे आपसे खाना स्वीकार करता है, तो आपका ज्ञान भी स्वीकार करना चाहिए, ये मैं उनकी तरफ से आपसे कह रहा हूँ। धन्यवाद।
बहुत अच्छा हरे कृष्ण। तो जो प्रसाद दे के मान जाए उसके लिए तो श्लोक देने की जरूरत नहीं है, तो प्रसाद दे के मान जाए तो कोई बात, बहुत अच्छा है, और जिसको श्लोक की जरूरत पड़े उसको श्लोक देने की भी तैयारी होना चाहिए, कोई ज्ञानी आता है कभी कभी तो उनको श्लोक देने के लिए भी हम तैयार होने चाहिए। ठीक है, चलो प्रभुपाद की जय। नीताय गौर प्रेमानंदे।